नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार फिर से बाइबल अध्ययन कार्यक्रम लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से ठीक हैं और कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। तो आज से हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से रोमियो नामक पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। इस पुस्तक के लेखक हैं संत पौलुस। इसमें संत पौलुस ने विश्वास एवं आदर्श मसीह जीवन पर जोर दिया है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है छुटकारा। जी हाँ श्रोताओ, हम अपने पापों से छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय पर आज हमारे वक्ता विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि आज के अध्ययन में हम सम्मिलित हों, आइए मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मेरा मसीहा सुबह का तारा, मधु से मीठा, प्राणों से प्यारा,
तुझसे ज्यादा मुक्ति दाता, जग भर में ना
जय 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 यीशु, तू है तू ही प्रभु। हाँ
जय 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 यीशु, तू है तू ही प्रभु।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की दया और प्रेम में रह करके कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से एक बार परमेश्वर की वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं अपने उन नए श्रोता मित्रों का स्वागत करता हूँ जो पहली बार आज हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मित्रों, अपने इस अध्ययन में हम बाइबल की पुस्तक से अध्ययन करते हैं और आज के अध्ययन में हम नए नियम की छठवीं पुस्तक रोमियो की पत्री नामक पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज हम इस अध्ययन में सिर्फ इसके परिचय को देखेंगे, परंतु आने वाले अध्ययन में हम इसको विवरण पूर्वक देखने पाएंगे। मित्रों, इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी महान प्रेम, दया और करुणा के लिए। धन्यवादित हैं प्रभु ये जीवन दान के लिए। धन्यवादित हैं हमारे जीवन के हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए। पिता परमेश्वर, आज इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के आत्मिक आँखों को, उनके कानों को, हृदय और विचारों को खोल दीजिए, ताकि जब आपके वचन को सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक से आप बोले और बातचीत करें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, दुखी और चिंतित हैं, परेशान हैं, किसी न किसी रूप से प्रभु वे अपने जीवन से हताश हो चुके हैं। आप उन्हें शांति दें, उन्हें चंगाई दें और अपनी महिमा प्रत्येक के जीवन से लें। इस समय हम सब अपने आप को और आज के अध्ययन को आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि आज मैंने कहा कि हम रोमियो की पत्री का अध्ययन आरंभ करते हैं, मैं आपको पौलुस के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ। उसकी पत्रियों में हम सर्वथा भिन्न प्रकाशन विधि को देखते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य से संपर्क करने के लिए अनेक विधियां अपनाई हैं। उसने मूसा के द्वारा पंच ग्रंथ अर्थात व्यवस्था की पुस्तकें दी, उसने इतिहास का वृतांत दिया, उसने कविताएं दी, उसने भविष्यवाणी का वचन दिया, परमेश्वर ने हमें सुसमाचार का वृतांत दिया, और अब हम एक नए परिप्रेक्ष्य में आते हैं, पत्रियां, जिनमें से अधिकांश पत्रियां पौलुस के द्वारा लिखी गई हैं। अडोल्फ डिस्मान ने पत्रियों और पत्रों में अंतर प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। ऑक्सीरिंकस मिस्र में पाए गए ताड़ पत्रों का परीक्षण करके उसने साहित्यिक एवं असाहित्यिक दस्तावेजों में अंतर पहचाना और पौलुस की पत्रियों को असाहित्यिक दस्तावेजों में गिना गया और इस प्रकार उन्हें पत्रियों की अपेक्षा पत्र कहा। तथापि अनेक विद्वान इस अंतर को उचित नहीं मानते हैं। मेरे मित्रों, ये पत्र या पत्रियां आपके और मेरे लिए इतनी अधिक हार्दिक एवं वैतिक हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि वे आज ही विशेष डाक द्वारा हमारे पास पहुंचाए गए हैं। पौलुस और अन्य प्रेरितों द्वारा कलीसियाओं को लिखे गए इन पत्रों में से प्रत्येक में प्रभु हमसे व्यक्तिगत रूप से बात करता है, परंतु रोम की कलीसिया को लिखी गई इस पत्र में संसार के लिए सुसमाचार का एक अति उत्तम घोषणा पत्र है। पौलुस के लिए सुसमाचार एक महान कलीसियाई अभियान था उस समय के संसार का, जिसके लिए मसीह मरा। रोम प्रमुख केंद्र था और रोम की कलीसिया को लिखा यह पत्र एक पत्री भी है। मेरे प्रियो, रोमियों की पत्री अध्याय 15 उसके पद 15 और 16 में पौलुस ने लिखा, तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा, यह उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। यहाँ पौलुस स्पष्ट कर देता है कि वह अन्य जातियों का प्रेरित है। उसने पत्रस के विषय में भी स्पष्ट कहा है कि वह इसराइल राष्ट्र का प्रेरित था। गलातिया प्रदेश की कलीसियाओं को उसने लिखा दूसरे अध्याय उसके 5-9 पद में, क्योंकि जिसने पत्रस से खतना किए हुओं में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया, और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यहोना ने, जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे, मुझको और बरनाबस को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुओं के पास। अतः आप देख सकते हैं कि पौलुस विशिष्ट रूप से अन्य जातियों का प्रेरित था। मेरे मित्रों, रोम की कलीसिया को लिखे इस पत्र के अंत में आप पौलुस के परिचित जनों के नाम देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि उनमें से अधिकांश जन अन्य जातियों में से थे। रोम की कलीसिया मुख्यतः अन्य जातीय कलीसिया थी। मेरे प्रिय मित्रों, पौलुस ने यह भी कहा है कि यदि रोम की कलीसिया का संस्थापक कोई है या होता तो वह वहां कभी नहीं जाता, परंतु उसने उन्हें वहां जाने की हार्दिक इच्छा प्रकट की, जैसा रोमियो के पत्र 1:15 से प्रकट है। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं। वह सुसमाचार प्रचार के लिए रोम जाना चाहता था। प्रेरितों के काम 26:17-18 में पौलुस जब अग्रिप्पा के समक्ष उपस्थित किया गया, तब उसने प्रभु द्वारा उसे दिया गया वचन उसे भी सुनाया था। लिखा है, मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले, कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं। मेरे मित्रों, पौलुस यद्यपि रोम जाने का इच्छुक था, वह वहां कभी नहीं जाता यदि उससे पहले कोई अन्य प्रेरित वहां सुसमाचार प्रचार कर चुका होता। हम रोमियों के पत्र 15:20 में पढ़ते हैं, मेरा मन की उमंग यह है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाओ, ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर मैं घर बनाऊं। मेरे मित्रों, पौलुस किसी अन्य प्रेरित के प्रचार क्षेत्र में नहीं जाता था, अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रोम में पौलुस के अतिरिक्त अन्य किसी प्रेरित ने प्रचार नहीं किया था। यहां मैं रोम के विषय कुछ कहना चाहता हूं, और मेरा प्रश्न यह है, रोम में किसने कलीसिया स्थापित की? मैं यह एक असाधारण बात कहना चाहता हूं, पौलुस ही था जिसने रोम में कलीसिया की स्थापना की थी। उसने लंबी दूरी की कलीसिया स्थापित की और रिमोट कंट्रोल के द्वारा अर्थात पत्री द्वारा उनका मार्गदर्शन किया। मेरे मित्रों, मैं यहां पर एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, रोम एक वैभवशाली नगर था, पौलुस वहां कभी नहीं गया था, और सच तो यह है कि वहां एक भी प्रेरित नहीं गया था, परंतु फिर भी वहां कलीसिया बन गई। यह कैसे हुआ? पौलुस संपूर्ण रोमी साम्राज्य में स्त्री पुरुष को मसीह में जीत रहा था और लोग मसीह को ग्रहण कर रहे थे। रोम में शक्तिशाली आकर्षण था और वहां अनेक जन ऐसे थे जिन्होंने रोमी राज्य के विभिन्न स्थानों में पौलुस से भेंट की थी। अब पूछेंगे, आपको यह कैसे पता है? जी हाँ, हमारे पास इसका एक अति उत्तम उदाहरण प्रेरितों के काम की पुस्तक में है, जहां हम पौलुस को कुरिन्थियुस नगर जाते हुए देखते हैं, प्रेरितों के काम 18:1-3 में। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थियुस में आया। वहां उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुंतुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी, इसीलिए वह उनके यहाँ गया। उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे, और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। मेरे प्रियो, पौलुस की भेंट अक्विला और प्रिस्किला से हुई थी। उनका घर रोम में था, परंतु यहूदी विरोध का वहां जोर आरंभ हो गया था। क्लौदियस जो रोम का सम्राट था वह उन्हें सताने लगा, और इस कारण इस दंपति ने रोम से कूच किया था। वे कुरिन्थियुस आ गए थे, और आगे चलकर हम देखते हैं कि वे पौलुस के साथ एफिसुस को गए थे और वहां मसीह की प्रभावी गवाही बने थे। जब पौलुस ने रोम की कलीसिया को पत्र लिखा था, तब वे लौटकर रोम आ गए थे। पौलुस ने उन्हें अभिवादन भी भेजा था। प्रेरितों के काम की पुस्तक में इस दंपत्ति के लिए यह वैतिक अभिवादन व्यक्त है। अन्य सदस्यों के बारे में क्या कहा जाए? पौलुस उन्हें भी जानता था। पौलुस की उनसे भी मुलाकात कहीं न कहीं अवश्य हुई थी, और उन्होंने पौलुस के प्रचार द्वारा मसीह को भी ग्रहण कर लिया था। पौलुस रोम की कलीसिया का उपस्थित रहित संस्थापक था, अर्थात वह उन मनुष्यों को प्रभु में लाया जो भविष्य में रोम से आकर्षित होकर वहां से चले गए थे। मेरे प्रियो, पौलुस रोम के बारे में जानता था, परंतु इस पत्री के लिखते समय तक वह रोम नहीं गया था। रोम एक प्रकार से रात में चलने वाले एक विशाल जहाज की नाई था, जो दूर दूर के किनारों तक लहर पहुंचा देता है। मित्रों, उसका प्रभाव रेडियो प्रसारण का सा था जो सम्राट के प्रत्येक कोने में पहुंच रहा था। पौलुस फिलिपी और थिसलोनिकी जैसे रोमी उपनगरों में भ्रमण कर चुका था। वहां उसने रोमी संस्कृति, व्यवस्था, भाषा, जीवन शैली और रीति रिवाजों का प्रदर्शन देखा था। उसने रोमी मार्गों पर यात्रा की थी और मुख्य मार्गों तथा विभिन्न केंद्रों में रोमी सैनिकों से भेंट भी की थी। उसने रोमी कारावासों में रातें बिताई थी। वह रोमी शासकों के समक्ष भी उपस्थित हुआ था। उसने अपनी रोमी नागरिकता का लाभ भी उठाया था। इस प्रकार आप देखते हैं कि पौलुस रोम नगर के बारे में सब कुछ जानता था, यद्यपि वह अभी रोम नहीं गया था। मित्रों, विश्व की राजधानी के प्रेरणा स्थान वह उस भटके हुए संसार में सुसमाचार का प्रचार करना चाहता था, जिससे परमेश्वर ने ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र को मरने के लिए दे दिया, जिससे कि उसमें विश्वास करने वाला नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। मेरे प्रिय मित्र, रोम एक विशाल चुंबक के समान था। वह उस युग के संसार के कोने कोने से स्त्री पुरुष को अपने केंद्र की ओर आकर्षित कर रहा था। पौलुस और अन्य प्रेरित इस वैश्विक साम्राज्य के समुद्र पार प्रदेश में आवागमन करते हुए असंख्य को क्रूस के चरणों में ले आए थे। इस साम्राज्य के अधिकांश प्रमुख नगरों में कलीसियाओं की स्थापना हो चुकी थी। समय के फेर में अनेक विश्वासी इस महान माया जाल के केंद्र की ओर खींचे चले आए थे। मित्रों, यह कहावत है, सब मार्ग रोम को जाते हैं, एक कहावत से बढ़कर है। जब विश्वासी इस महानगर में एकत्र हो गए, तब वहां एक कलीसिया स्थापित हो गई। संभवतः रोम की कलीसिया का संस्थापक कोई एक मनुष्य नहीं था। पौलुस के और साम्राज्य के सीमांत प्रदेशों में प्रचार करने वाले प्रेरितों द्वारा विश्वास में लाए गए मनुष्य रोम में आकर बस गए थे और उन्होंने स्थानीय कलीसिया बना ली थी। इसमें संदेह नहीं कि इस कलीसिया का संस्थापक पत्रस नहीं था और न ही उसका उस सहभागिता से कोई संबंध था। मेरे प्रियो, उसके प्रचार पेंतिकोस्त के दिन और अन्य अवसरों पर केवल इसराइलियों के लिए ही थे। कॉर्नेलियस के मन परिवर्तन तक पत्रस को विश्वास ही नहीं था कि अन्य जातियां भी विश्वासियों की देह में स्थान रखती हैं। मेरे मित्रों, सारांश यह है कि इस पत्री का लेखक पौलुस ही है और उसने रोम के विश्वासियों को यह पत्र लिखा था। उसका रोम भ्रमण एक भावी घटना थी, जबकि वह तो भली भांति जानता था कि वह रोम जाएगा। अतः पौलुस ही रोम की कलीसिया का संस्थापक था। मेरे प्रिय, इस महान पत्री के अध्ययन को आरंभ करते हुए मैं इसके महान विषय के कारण स्वयं को अयोग्य समझता हूँ। इसका विषय है परमेश्वर की धार्मिकता। यह एक ऐसा विषय है जिसकी घोषणा का प्रयास मैं वर्षों से कर रहा हूँ। यह एक ऐसा संदेश है जिसे संपूर्ण संसार आज न तो सुनना चाहता है और न ही स्वीकार करना चाहता है। मेरे मित्रों, संसार को मनुष्य की महिमा सुनना अच्छा लगता है। संसार परमेश्वर की अपेक्षा मनुष्य का महिमान्वन करना पसंद करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि मनुष्य की महिमा की शिक्षा देने वाली कोई भी सेवकाएं जो मनुष्य की पूर्ण भ्रष्ट अवस्था को उजागर नहीं करती और मनुष्य को नाशमान एवं अकिंचन प्रकट नहीं करती, इस महान सत्य को अनदेखा करने वाली कोई भी सेवकाई मनुष्य का उद्धार नहीं करवा सकती और न ही कोई उपचार प्रस्तुत कर सकती है। मनुष्य के पाप की एकमात्र सिद्ध औषधि हमें मसीह में प्राप्त है, जिसे परमेश्वर ने भटकी हुई जाति के लिए उपलब्ध कराई है। रोमियों की पत्री का यही एक महान संदेश है। मेरे मित्रों, मैं यह कहूं तो क्या उचित नहीं होगा कि क्रूस पर लटका हुआ अपराधी रोमी साम्राज्य में वास करने योग्य नहीं जाना गया था, इसलिए उसे मृत्यु दंड दिया गया था। परंतु प्रभु ने कहा कि वह उसे स्वर्ग में वास करने योग्य बनाएगा। यीशु ने उससे कहा, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 43 पद में, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर पापियों को स्वीकार करता है जैसा मैं हूं, जैसे आप हैं, और वह उन्हें परमेश्वर के परिवार में जोड़ देता है तथा उन्हें परमेश्वर के पुत्र बना देता है। इसका एकमात्र कारण है क्रूस पर मसीह यीशु की मृत्यु, आपकी और मेरी योग्यता नहीं। रोमियो की पत्रिका यह एक महान संदेश है, क्योंकि हम अपनी योग्यता के द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर की दया और प्रेम के द्वारा बचाए जाते हैं। स्विट्जरलैंड के एक टीकाकार गोडेट ने कहा है कि नव जागृति निश्चय ही रोमियो की पत्रिका और गलातियों की कलिसिया को लिखी गई पत्रिका प्रभाव था, और यह संभव है कि कलिसिया में प्रत्येक आत्मिक पुनरुद्वार कारण और प्रभाव में इस पत्री के गहरे ज्ञान से संबंधित रहेगा। मित्रों, मार्टिन लूथर ने लिखा कि रोमियो की पत्री नए नियम का सच्चा उत्कृष्ट लेख एवं परिशुद्ध सुसमाचार है, जो एक विश्वासी द्वारा एक एक शब्द कंठस्थ किए जाने वरन आत्मा की प्रतिदिन की रोटी स्वरूप ग्रहण किए जाने के योग्य एवं उपयुक्त है। जी हाँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इसे अधिक पढ़ लिया गया हो या इसे समझ लिया गया हो या इसका अध्ययन पूरा कर लिया गया हो। इसे जितना अधिक पढ़ा जाए उतनी ही अधिक यह मूल्यवान हो जाती है और इसका रसावादन अधिक अच्छा हो जाता है। मेरे प्रियो, आरंभिक पितरों में क्रिस्तो स्तंभ इस पत्री को प्रति सप्ताह 2 बार पढ़वाया करते थे। कोलरिज ने कहा कि रोमियो की पत्री सर्वाधिक दुर्बोध लेख है। इसके अतिरिक्त एक महान वैज्ञानिक था जो इस पुस्तक की ओर उन्मुख हुआ और उसने पाया कि इससे वास्तविक विश्वास की प्राप्ति होती है। इस वैज्ञानिक माइकल फेराडे ने मरणशया पर एक संवाददाता से पूछा, अब आपके विचार क्या हैं? फेराडे ने कहा, अब मैं कल्पना नहीं करता हूँ, मेरा विश्वास मेरे मुक्तिदाता मसीह में दृढ़ है। वह मेरे लिए मरा और मेरे स्वर्ग प्रवेश का मार्ग तैयार किया। जी हाँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि इस पत्री ने बेडफोर्ड वासी ठठेरे को, जिसका नाम जॉन बनियन था, बदल दिया? कुछ वर्ष पूर्व मुझे उसके बारे में जानकारी मिली कि वह विद्वान नहीं था और न ही कवि था, परंतु उसकी लिखी हुई पुस्तक बाइबल के बाद दूसरी पुस्तक थी जिसकी सर्वाधिक प्रतियां बिकी है। उसकी इस पुस्तक का नाम है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, अर्थात तीर्थ यात्री की उन्नति। यह पुस्तक एक पापी के अनुग्रह द्वारा उद्धार की कहानी है, और वह पापी जॉन बनियन था। और इतिहास का अभिलेख है कि उसने रोमियो की पत्री को पढ़ा और उसका अध्ययन किया और उसकी प्रगाढ़ कहानी को अपनी आत्मकथा में व्यक्त किया। मेरे प्रियो, तीर्थ यात्री की कहानी कि वह क्रूस की छांव में आया और पाप का बोझ हट गया और उसने स्वर्गीय नगर की यात्रा आरंभ की। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कुछ करें कि आपके अद्भुत लाभांशों का भुगतान हो। रोमियो के पत्री को पढ़ें और बार बार पढ़ें। यह पत्री हमारी संपूर्ण मानसिक वृत्ति की मांग करती है, और इसके अतिरिक्त इसे प्रार्थना और विनती में मग्न होना चाहिए, जिससे कि पवित्र आत्मा हमें शिक्षा दे पाए। प्रिय मित्रों, प्रत्येक विश्वासी को रोमियो की पत्री का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि यह पुस्तक विश्वासी को विश्वास में दृढ़ करती है और परमेश्वर के वचन को और अधिक उनके निकटता में लाकर उनके जीवन को मजबूत करती है। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर हमारे रोमियो की पुस्तक का परिचय समाप्त होता है, और मैं यह विश्वास करता हूँ कि इस परिचय के द्वारा आपने इस बात को अवश्य जान लिया कि इस पुस्तक की महत्व कितनी अधिक है। पौलुस ने इस पत्री को लिखा है और रोमियो की कलीसिया के लिए लिखा है, ताकि वहां के विश्वासी उन महान बातों को सीख सकें जिसे उन्हें जानने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आज हम भी इस पत्री को पढ़ें, अपने आप को तैयार करें, ताकि इस वचन के द्वारा से हम बहुतायत से परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। आने वाले अध्ययन में हम देखेंगे कि पौलुस इस पत्री में किस प्रकार की समस्याओं का समाधान करता है। इतना ही नहीं, पौलुस इस बात को भी स्पष्ट करता है कि मनुष्य परमेश्वर को किस रीति से अपने दृष्टिकोण या अपने बुद्धि से पाना चाहता है। हम देखेंगे पत्रियों में कि पौलुस ने लिखा है कि लोगों ने परमेश्वर के रूप को पशुओं में, चौपायों में और मूर्तों में ढाल दिया और वे उस रूप में परमेश्वर को देखना चाहते थे। और इसके बारे में भी पौलुस हमें बताता है कि कोई भी परमेश्वर को रूप नहीं दे सकता। जी हाँ, हम आने वाले अध्ययन के लिए अपने आप को अभी से तैयार करें और निश्चय जाने कि ये रोमियो की पत्री का अध्ययन मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। कृपया आप इस अध्ययन को न छोड़ें, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को इसके बारे में अवश्य बताएं और इसमें भाग लेने को कहें ताकि वे भी अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सकें। मित्रों, तो आइए हम सब मिलकर के एक बार फिर से प्रार्थना करें और इस पुस्तक के अध्ययन में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर की आशीषों को मांगें। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस रोमियो की पत्री के परिचय के लिए, जिसके द्वारा से आपने हमें बताया कि आपका दास पौलुस, जिसने इस पत्री को लिखा है, इस बात को बताया है कि हम आपको जान सकें। और इतना ही नहीं प्रभु, जब हम आने वाले समय में इस विषय पर अध्ययन करते हैं तो हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आप अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ से भरें ताकि हम इसके द्वारा और अधिक आशीषों को प्राप्त कर सकें। आज जो बातें आपने सिखाई है इसलिए धन्यवाद देते हैं कि रोमियो की पत्री पौलुस के द्वारा लिखी गई है और वहां के कलीसिया को आपके दास पौलुस ने स्थापित किया है, पास में नहीं परंतु दूर में रह करके, और उसने ऐसे महान कार्य किए और आपने उसे इस्तेमाल किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, प्यारे प्रभु तू मेरे जीवन का सहारा है। संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, प्यारे प्रभु तुम्हारा है।